आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़ पर फोन इन कार्यक्रम स्वास्थ्य संजीवनी में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। सुबह के 7:05 हुए हैं। स्वास्थ्य संजीवनी के अंतर्गत फोन इन कार्यक्रम में आज का विषय है कैंसर रोग जागरूकता और उपचार। स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ हैं मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व कैंसर रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर मनोज शर्मा और सुपर स्पेशलिटी फोर्टीज अस्पताल में कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉ तपस्विनी प्रधान शर्मा। कैंसर रोग जागरूकता और उपचार इस विषय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमें सीधे फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 1800113663। ये नंबर टोल फ्री है। आप देश के किसी भी कोने से बिना किसी शुल्क के हमें सीधे फोन कर सकते हैं। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं डॉक्टर सोनिया दत्ता।
नमस्कार। कैंसर या कर्क रोग शब्द सुनते ही एक घातक बीमारी और मौत का साया सा ध्यान में आ जाता है। आधुनिक विश्व में कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो अधिकतर लोगों की मौत का कारण बनती है। एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2005 में लगभग 8 लाख लोग कैंसर से मौत के आगोश में समा गए थे और इतनी बड़ी संख्या में लोगों के मरने से विश्व स्तर पर इस भयावह बीमारी के फैलने से सब चिंतित हुए और इसी कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाने का निर्णय लिया ताकि लोगों को कैंसर से होने वाले नुकसान के बारे में बताया जा सके और अधिक से अधिक जागरूक किया जा सके। कैंसर एक ऐसा रोग है जो बहुत ही आम हो गया है। लगभग हर 10 भारतीयों में से एक को कैंसर होने की संभावना है। दुनिया में हर 6 मौत जो मृत्यु होती है उनमें से एक का कारण कैंसर है। लेकिन यदि हम सभी अपनी जीवन शैली में कुछ परिवर्तन करने को तैयार हो जाएं तो लगभग 60-70% मामलों में कैंसर को रोका भी जा सकता है। तो क्या कैंसर सचमुच इतना खतरनाक है जितना इसे समझा जाता है, या शुरुआत में ही इसे पकड़ लेने से कैंसर से जंग जीती जा सकती है? आइए ये सब जानकारी लेते हैं और श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में 2 एक्सपर्ट मौजूद हैं। मैं दोनों का स्वागत करती हूं, डॉक्टर मनोज शर्मा जी
नमस्कार
और डॉक्टर तपस्विनी प्रधान शर्मा
जी नमस्कार।
डॉक्टर मनोज, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं कि कैंसर के कितने प्रकार हैं और ये जिस तरह से शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित करता है, क्या ये हमेशा जानलेवा है?
देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है कि नाखून और बाल को छोड़ के कैंसर शरीर के किसी भी अंग को नहीं छोड़ता। किसी भी उम्र में हो सकता है, किसी भी जाति, रंग या देश के नागरिक में हो सकता है।
सर्वव्याप्त है,
बस बाल और नाखून में नहीं होता है क्योंकि वो थोड़े से इतने जीवित ऊतक नहीं है वहाँ पे। दूसरी चीज है कि हमें एक दूसरा डिवीजन भी करना होगा। लोग सुनते हैं कि कहते हैं कि साहब कुछ कैंसर ठीक नहीं होता है कहते हैं। असल में शरीर में कैंसर 3 प्रकार से उनका विभाजन वैसे किया जाता है वैज्ञानिक तौर पे या विकृति विज्ञान जिसे पैथोलॉजी कहते हैं उसके रूप में। तो उसमें जो बाहरी त्वचा के ऊतक हैं जैसे स्क्वामस सेल है और फिर जो मसल्स के ऊतक हैं जो मांसपेशियों के हैं, हाँ, और फिर शरीर के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है पाचन तंत्र है उसके ऊतक हैं उनके हिसाब से होता है। परेशानी तब आती है जब कुछ प्रकार के रक्त का कैंसर, रक्ताबुद कहते हैं जिन्हें, या लसिकाबुद जो गांठों के कैंसर होते हैं, या आप कह लीजिए मसल्स के जो कैंसर होते हैं, उनको इलाज करने में बड़ी दुविधा का सामना करना पड़ता है। जबकि जो त्वचा के कैंसर होते हैं, मुख के कैंसर होते हैं, जो तंबाकू से होने वाले कैंसर होते हैं, शुरुआती हालत में वो हरदम ठीक हो जाते हैं, स्त्रियों में गर्भाशय मुख के कैंसर होते हैं गायनेकोलॉजिकल कैंसर, उसमें वो ठीक हो जाते हैं। यहाँ तक कि अंडेदानी के कैंसर जिनके आजकल बहुत बाहुल्य हो गया है, वो भी समय अनुसार आके उनका ऑपरेशन और कीमोथेरेपी देकर ठीक हो जाते हैं। स्तन कैंसर शुरुआत की हालत में ठीक हो जाते हैं। मुख्य गर्भाशय जिसे एंडोमेट्रियल कैंसर कहते हैं, शुरुआत में पकड़ा जाए। ये सारे कैंसर मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत प्रमुख रूप से हमारे देश में इनका बाहुल्य बहुत ज्यादा है, मुख्य रूप से तंबाकू के। तो ऐसा नहीं। अच्छा, दूसरी चीज बच्चों में, अभी 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस है, बच्चों में ये डिक्लेयर कर दिया गया कि बच्चों के कैंसर ठीक हो जाते हैं। उनमें यहाँ तक कि रक्त कैंसर, ये एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकेमिया है या लिम्फोमा है, ये ठीक हो जाते हैं। उनको आंख में होने वाला कैंसर समय अनुसार पकड़ा गया, वो ठीक हो जाता है। तो ये बड़ी भारी भ्रांति है। हमारे पास मरीज आते हैं, जैसे अस्पताल में अभी मैंने ज्वाइन किया है दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में, बहुत ज्यादा मरीज हैं। और वहाँ पे क्या है कि अधिकांश मरीज या तो वृद्धावस्था में आते हैं, जिन्होंने तंबाकू छोड़ दी होती है उन्हें भी कैंसर हुआ होता है फेफड़े का, गले का, और या फिर लास्ट स्टेज में आते हैं। जैसे इस समय हम बड़े परेशान हैं पित्त की थैली और लिवर के कैंसर को लेके। मैंने कभी इतने पित्त की थैली और लिवर के कैंसर नहीं देखे। यहाँ तक कि पित्त की थैली और लिवर के कैंसर भी समय अनुसार आ जाए, उनका ऑपरेशन हो जाए, तो वो भी ठीक हो जाते हैं। पर वो लास्ट स्टेज में आते हैं तो उनको राहतकारी इलाज के अलावा कुछ नहीं बचता है।
तो डॉक्टर साहब, तंबाकू आप बार बार बता रहे हैं कि कैंसर का कारण है, हम आपसे जानना चाहेंगे और क्या क्या कारण है जो इस जानलेवा बीमारी को जन्म देते हैं। लेकिन आइए कार्यक्रम का पहला प्रश्न लें। एक श्रोता हमारे साथ लाइन पे बने हुए हैं। हेलो।
हेलो,
हाँ जी नमस्ते।
डॉक्टर साहब नमस्कार।
नमस्कार
विशेषज्ञों को नमस्कार।
नमस्कार
डॉक्टर साहब, मेरा नाम पंडित ब्रह्मदत्त भारद्वाज है, मंगोलपुरी दिल्ली से बोल रहा हूँ। साइकिल मार्ग।
हाँ जी ब्रह्मदत्त जी, अपना प्रश्न पूछें।
मैडम जी, मेरा ना कुछ जिज्ञासाएं रूपी प्रश्न है कि जो ट्यूमर होता है क्या वो कैंसर के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और जो कैंसर पीड़िता है क्या वो अपनी संतान को स्तनपान दुग्धपान करा सकती है, क्या कैंसरों का अनुवंशिक होता है, क्या ये संक्रामक होता है, क्या ये लाइलाज है, क्या ये कैंसर डेथ सेंटेंस है। और अंतिम प्रश्न सर जी, जो कैंसर पीड़ित व्यक्ति है उसके परिजन इलाज के लिए ना दर बदर घूमते हैं, कभी झोला छाप डॉक्टरों के चक्कर में, आयुर्वेद एलोपैथी नेचुरोपैथी के चक्कर में, तो अपना कीमती संवर्धन गंवा देते हैं।
बिल्कुल,
संदर्भ में आपका मार्गदर्शन चाहूंगा। धन्यवाद बहुत बहुत।
तो डॉक्टर तपस्विनी, उनके प्रश्न सुने।
तो
क्या हर गांठ कैंसर बन सकती है, ये इनका पहला प्रश्न है।
ये सवाल अधिकतर हमारे मरीज हमसे पूछते हैं। तो ट्यूमर क्या है और कैंसर क्या है? जब शरीर में जो हमारा जो मेन सेल्स होते हैं, जब वो बहुत ही अलग रूप से डिवाइड करते हैं किसी भी कारण से, जैसे कार्सिनोजन के इन्फ्लुएंस से डिवाइड करते हैं, पर उनका मौत नहीं होता है, इमॉर्टल हो जाता है वो सेल। तो जब इस रूप में डिवाइड कर करके जब एक जगह पे एकत्रित हो जाते हैं तो एक ये ट्यूमर का मास बन जाता है। पर हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता है, तभी हम मरीज को समझाते हैं ट्यूमर बिनाइन भी हो सकता है और ट्यूमर मैलिग्नेंट भी हो सकता है। बिनाइन ट्यूमर जब हम ये शब्द का प्रयोग करते हैं, ये जानलेवा नहीं होते हैं। बट जब हम इस चीज को मैलिग्नेंट ट्यूमर की तरह डिस्क्राइब करते हैं तो ये कैंसर का रूप देते हैं। तो जैसे उन्होंने पूछा क्या कैंसर जानलेवा है, जरूर कैंसर जो है लाइफ थ्रेटनिंग है, यानी कि इस बीमारी का इलाज अगर हम करें तभी हम क्योर की ओर उम्मीद कर सकते हैं, अदरवाइज ये जो है जानलेवा हो सकता है। उसके कई प्रकार से ये कैंसर जो है वो रोग दिखता है, इसीलिए हमें बार बार अवेयरनेस प्रोग्राम करना पड़ता है, जैसे इंसान को समझ में आए कि अगर शरीर कोई चीज सिम्टम्स दे रहा है, 4 से 6 हफ्ते से ज्यादा हो गया है, आपने हर तरह के इलाज भी कर लिया है, मेडिसिन भी ले लिए हैं, पर फिर भी ये सिम्टम्स जो है नहीं जा रहे हैं, तो इंसान को समझ जाना चाहिए कि ये चीज जो है इग्नोर करने लायक नहीं है और आपको एक स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। जितना जल्दी पेशेंट आएगा, जितना अर्ली स्टेज में पेशेंट डायग्नोस होगा, उतना ही अच्छा क्योर रेट रहेगा।
बिल्कुल, वो तो कहा भी जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचाव इलाज से सस्ता है, आसान है और दुख भी ज्यादा नहीं देता। डॉक्टर एक अगला इन्होंने प्रश्न पूछा ब्रह्मदत्त जी ने कि क्या ये संक्रामक है और ब्रेस्ट फीडिंग से भी क्या ये माँ से बच्चे को जा सकता है?
बात ये समझना बहुत जरूरी है कि कैंसर जो है एक से दूसरे को फैलता नहीं है। जैसे हम आजकल कोरोना वायरस के बारे में इतना सुन रहे हैं, तो ये जो कीटाणु होते हैं वो एक से दूसरे को जाते हैं, जिसको हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। तो ये कैंसर जो है इस तरह से फैलता नहीं है। अधिकतर मरीज का यही सवाल होता है, क्या हम कैंसर पेशेंट की थाली से खाना खा सकते हैं कि नहीं, क्या उनके साथ बैठ सकते हैं कि नहीं, क्या हमारे बच्चे लोग उनके साथ खेल सकते हैं कि नहीं। तो ये
क्या माँ बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर सकती है?
बिल्कुल कर सकती है। ब्रेस्ट फीडिंग से जो ब्रेस्ट के जो सेल्स हैं या कैंसर के जो सेल्स हैं वो दूध के जरिए नहीं जाता है। तो ये चीज से हमें अपने आप को क्लैरिटी लाना है कि ये कम्युनिकेबल नहीं है, ये इस रूप से फैलता नहीं है। जहाँ तक एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, जेनेटिक जो हम बोलते हैं, यानी कि परिवार में अगर किसी को कैंसर, जैसे स्तन का कैंसर हम देखते हैं महिलाओं में, स्तन का कैंसर जो है 5 से 10% लोगों में फैमिली में रन करता है। यानी कि उसमें एक जीन जिसको हम बहुत बार 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 विषय भी करते हैं ब्रेका जीन को लेके, तो ब्रेका जीन में अगर म्यूटेशन है, अगर माँ में है और अगर बच्चे में भी वो देखा जाता है, तो बच्चे का जो पहले से ही हमारा स्क्रीनिंग शुरू हो जाता है और कोशिश किया जाता है कि उसको ब्रेस्ट कैंसर होने से पहले ही उसका इलाज हो सके।
तो ऐसा इलाज संभव है?
बिल्कुल, जिसको हम प्रोफिलैक्टिक मास्टेक्टमी कहते हैं।
बिल्कुल, धन्यवाद डॉक्टर साहब। आइए कार्यक्रम का अगला प्रश्न है। हेलो
जी, नमस्कार।
नमस्कार,
मैं जयकिशन अग्रवाल साइकिल मार्केट चैनल चौक से बोल रहा हूँ।
जी हाँ अग्रवाल जी, आपका कार्यक्रम में फिर से स्वागत है। आप हमारे इतने नियमित श्रोता हैं कि हमें भी आपके सवालों का इंतजार रहता है।
बड़े बड़े धन्यवाद आपका। आज हमारे यहाँ जो पल्स पोलियो है, हैजा इतना फैलता था उस समय में, हमारे समय में, कि एक आदमी को लेकर जा रहे हैं, दूसरा मरने के लिए तैयार पड़ा है, या चेचक, इससे बड़ा नुकसान होता था। और अब ये तीनों चीजें गायब हो गई हैं और ऐसी पल्स पोलियो की दवाई आई कि जो विकलांग होने से पूरे देश को बचा दिया है। तो क्या हमारे यहाँ जैसे एक लड़की 16 साल की है या 14-15 साल की है, उसे एक इंजेक्शन देते हैं MMRI का या फ्लोराइड, जो भी इंजेक्शन देते हैं, उसे पता चलता है कि आगे चल के उस लड़की को यूट्रस का या कोई कैंसर नहीं होगा। तो जब ऐसी दवाई बनी है तो क्या हमारे को कोई ऐसे जो दवाई बनी है कि आगे चल के कैंसर नहीं होगा, तो क्या हमारे को ऐसा इंजेक्शन नहीं है कि जो हम जब बच्चा जन्म लेता है और 12-13 साल तक इंजेक्शन लगते हैं, तो क्या उस इंजेक्शन को हम इसमें शामिल करें जिससे कि आगे कैंसर होना ना हो पाए, नंबर एक। नंबर दूसरा, आपने अभी बताया कि भाई तंबाकू, ये इन चीजों से कैंसर बहुत होता है, लेकिन जो लोग बचपन से ही पहले तंबाकू और कच्चा तंबाकू खाते थे और सुपारी और उसमें चूना डाला और उसको खाते रहते थे, तो वो कहते थे दांत भी ठीक रहते हैं। और आज भी लोग बीड़ी पीते हैं, ट्रक चलाते हैं, वो तो बिना बीड़ी सिगरेट के रहते ही नहीं है, लेकिन कैंसर नहीं होता। तो क्या ये कैंसर किसको माने कि भाई पोल्यूशन है या नहीं है, उस वजह से होता है? क्योंकि तो कैंसर बाद में पता चलता है कि इसको लीवर का कैंसर हो गया है या इसको यूट्रस का कैंसर हो गया है या इसको ब्रेस्ट कैंसर हो गया है, पहले तो पता चलता नहीं है। तो ये कैसे करें, या ब्लड में आता नहीं है, तो क्या कोई ऐसा टेस्ट है जो ऐसा अभी तक निकला है कि भाई ब्लड से ही पता चल ले या यूरिन से पता कर ले कि यूरिन में इंफेक्शन होता है, पता चल जाता है कि भाई इसको ये बीमारी है?
जी हाँ जयकिशन जी।
जयकिशन जी, हम सोचते हैं कि हम आपके प्रश्न का उत्तर दे दें पहले, बाद में लंबी बातें करेंगे। देखिए ऐसा है कि एक एक चीज ऐसी है और एक शब्द ऐसा है जिसका यदि हम उपयोग करें, तंबाकू के ऊपर यदि हम सर्जिकल स्ट्राइक कर दें या 370 कर दें, तो मैं बताऊं आपके आधे अस्पताल खाली हो जाएंगे मरीजों से। और इसके लिए जन समाज से कोई प्रयास नहीं किया गया है। आजकल मैं दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में हूं और कल क्या कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस था। मैं रोज उस 35 साल के, 30 साल के, 22 साल के लड़के की फोटो फेसबुक पे डाल रहा हूँ, ये दिखाने के लिए कि वो कब से तंबाकू खा रहा था और इस उम्र में जिनकी शादी हो गई उनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो इस परिस्थिति में हमारे पास आते हैं कि उनके कैंसर का इलाज असंभव है, उन्हें मरना ही है। वो इतनी लेट स्टेज में आते हैं। किसी का, काश मेरे पास आपका मोबाइल नंबर होता तो मैं उस पर आपको सारी फोटोग्राफ्स भेज देता, पहली चीज। दूसरी चीज, इसकी दूसरी सीमा ये है कि वृद्ध लोग जिनकी की वृद्धावस्था सुखपूर्वक बीतनी चाहिए, वो बीड़ी पीने वाले फेफड़ों के कैंसर ले लेके ऐसी परिस्थिति में आ रहे हैं कि उनको पीड़ा भी है, तकलीफ भी है, खांसी भी है, पर उनका रोग लाइलाज है। उन्हें हम राहतकारी इलाज देके एक करीब एक सुषुप्ता अवस्था में उनको रख के घर भेज देते हैं, क्योंकि हमारे पास अस्पताल में बेड्स की कमी है, हमारे पास चिकित्सकों की कमी है। इतने बड़े कैंसर की भीड़ हमारे पास सिर्फ तंबाकू से आ रही है कि हमें उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा है। जहाँ तक कहते हैं आप पता नहीं लगता है, ये बताइए मुझे कि स्टॉक मार्केट होता है, क्रिकेट की बॉल फेंकी जाती है, उसका सबको पता होता है, क्योंकि आप लोग कैंसर से कैंसर की जानकारी प्राप्त करने के लिए आपकी तरफ से डिमांड ही नहीं आती है सरकार के ऊपर कि हमारे ऊपर हमारे लिए कैंसर से या स्वास्थ्य कार्यक्रम रेडियो टीवी पे प्राइवेट चैनल्स पे दें। ये तो आकाशवाणी और दूरदर्शन है और यहाँ बैठे हुए कुछ ऐसे दिग्गज कार्यकर्ता हैं, यहाँ के ऑफिसर्स हैं जो कि बार बार कैंसर के प्रोग्राम करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं। नहीं, आप लोगों की तरफ से तो कोई शुरुआत नहीं है। हर तरह के परीक्षण अवेलेबल है। एक महिला यदि अपना एक परीक्षण करा लेती है पूरा तो उसे बहुत सारे कैंसर होने की संभावना खत्म हो जाती है। तो ये मत कहिए कि ऐसा कोई परीक्षण नहीं है।
बिल्कुल डॉक्टर साहब, और बिल्कुल डॉक्टर साहब, और तंबाकू तो डॉक्टर साहब ऐसी चीज है कि जो लेता है उसके लिए नुकसान है, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, और सेकंड है स्मोक, पैसिव स्मोक से, जैसा आपने बताया परिवार में बाकी लोगों को, बच्चों को, छोटे बच्चों तक को कैंसर हो जाता है। और आंकड़ों के हिसाब से आई थिंक लंग कैंसर से, फेफड़ों के कैंसर से बहुत ज्यादा मौतें होती हैं।
इनफैक्ट 90% जो फेफड़ों में कैंसर होता है वो तंबाकू के सेवन से होता है। और अगर आप नाकान गले का कैंसर देखें, हेड नेक कैंसर जिसको कहते हैं, अराउंड 80-90% ये कैंसर।
और जहर तो जहर है, हम बिल्कुल इंतजार नहीं करेंगे कि थोड़ा है, ज्यादा है और इसका असर कब होगा।
एक चीज मैं इसमें मैडम की बात जो कह रही है उसमें ऐड करना चाहती हूँ। इस वक्त मेरे पास ना बहुत सारे मरीज ऐसे आ रहे हैं जिनसे हम पूछ रहे हैं, एक्चुअली ये हमारे स्टडी का एक इशू बन गया है। वो कहते हैं जी तंबाकू 5 साल पहले छोड़ दी थी, अरे स्मोकिंग 10 साल पहले छोड़ दी थी। वो ये कहते हैं, हमारे उनको ये पढ़ाया गया था कि हाँ जी यदि तंबाकू या स्मोकिंग छोड़ने तो उसके चांसेस कम होते हैं। हमने देखा है छोड़ने के बाद भी चांसेस कम नहीं हो रहे हैं और उसके पीछे बहुत सारे दूसरे कारण भी हो सकते हैं। परंतु क्यों तंबाकू? मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरे अस्पताल के आधे से ज्यादा रश जो है वो तंबाकू से हुए हुए कैंसर का है और वही एक प्रमुख कारण है हमारे यहाँ। बाकी के अन्य कारण हम लोग आगे आने वाले कार्यक्रम में डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर भी रोक लगाने की बहुत जरूरत है। तो ऐसा नहीं है, जानकारी का अभाव, वो कहते हैं ना कि कानून की का ज्ञान न होना भी बराबर एक अपराध है। तो इसी प्रकार कैंसर की जानकारी न होना उसका शिकार बनने के बराबर है।
और डॉक्टर साहब एक उनका दूसरा प्रश्न था जो आप कार्यक्रम से पहले भी बता रहे थे, टीकाकरण। कुछ कैंसर ऐसे हैं जिनका टीकाकरण भी हो सकता है, पहले से ही वैक्सीनेशन दिए जाते हैं।
देखिए ऐसा है कि हमको टीकाकरण के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि वो एक ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, HPV वायरस कहते हैं। अब वो इतना बदमाश हो गया है कि पहले 2 किस्म के वायरसों का टीकाकरण था, फिर उसने उसका देखा वो 2 टीकाकरण से असर होना बंद हो गया तो पता चला 4 किस्म के वायरस थे उनका टीकाकरण निकला। अभी 2-3 साल पहले मैं मेलबोर्न गया था, वहाँ 9 तरह के HPV वायरस का टीकाकरण निकल आया है जो कि हमारे देश में आने वाला है। तो ये टीकाकरण जो है ये ठीक है, ये आपको सुरक्षा प्रदान करता है। ऑस्ट्रेलिया में लड़कों में टीकाकरण किया गया तो उनके गुप्तांगों के ऊपर होने वाले जो गुरखुन है उनमें बहुत कमी आई, और वहां की लड़कियों में इस तरह के जो एचपीवी वायरस पॉजिटिव हो जाता है टेस्ट में वो कमी आई। पर हम ये कहते हैं कि जब ये टीकाकरण नहीं था तो उस समय हम जन समाज में ये प्रशिक्षण और शिक्षा दिया करते थे कि एजुकेटेड हो, प्रशिक्षित हो, अच्छा क्या कहते हैं खुराक लो, गुप्तांगों की स्वच्छता रखो, और जो क्या कहते हैं संभोग है उसको संभाल के, मतलब सुरक्षित यौन संबंध होने चाहिए, इसके बारे में बहुत प्रचार किया जाता था, क्योंकि पुरुष से स्त्री में और स्त्री से पुरुष में ये वायरस यौन संबंध के दौरान ही जाता है, तो उसके बारे में कहा गया था। आज के परिप्रेक्ष्य में ये बहुत आवश्यक हो गया है, क्योंकि स्वतंत्रता के नाम पे नए जवान लड़के लड़कियां बहुत यौन उन्मुक्त संबंध स्थापित कर रहे हैं, वो भी बहुत
अप्राकृतिक,
अननेचुरल, और वो भी अनसेफ, जिसको कहते हैं असुरक्षित यौन संबंध स्थापित कर रहे हैं, क्योंकि मैं इस तरह के एक एनालिसिस से एसोसिएटेड था 20 साल से पुरुषों में सेक्सुअल हैबिट्स के बारे में, और जो इंटरव्यूज पे जो रिजल्ट सामने आए हैं वो बहुत डरावने हैं कि आने वाले समय में यदि इस तरह के यौन संबंध जवानी में 13 साल 14 साल के बच्चों में शुरू हो जाते हैं तो आने वाले समय में सच में उन्हें 9 प्रकार के किस्म के वायरस, नहीं पता नहीं कितने प्रकार के किस्म के वायरस की वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी, वो निकल आएंगे। तो ये हमको इस पे भी ध्यान देना है कि हम पर्सनल हाइजीन, जिसको कहते हैं गुप्तांगों की स्वच्छता और न्यूट्रिशन और ज्ञान और सुरक्षित यौन संबंध कैसे उनकी आदत डाली जाए जन समाज में, उससे बहुत फर्क पड़ने वाला है।
संस्कारों को से जीना और मर्यादा में रहना, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी।
बिल्कुल, एक हमारे, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस राजनीतिक संस्थान का, वो हमारी हिंदी संस्कृति के बारे में बहुत प्रचार करते हैं, परंतु उन्होंने आज तक कभी भी जो हम जिसको कहते हैं सेलिबेसी कहते हैं हिंदी में, हम उसको बहुत, मतलब अपनी शुद्धता के बारे में, उसके बारे में कोई प्रचार नहीं है, और यदि वो प्रचार शुरू हो जाए तो लगता है कि नवयुवकों और नवयुवतियों में ये थोड़ी सी समझ आए कि यौन संबंध और यौनानंद ही जीवन का लक्ष्य नहीं है, देश के निर्माण में और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे आप क्या कहते हैं अपने को एंटरटेन कर सकते हैं।
बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो दो श्रोता हमारे साथ लाइन पे बने हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, आइए एक एक करके उनके प्रश्न लें। हेलो
मैम नमस्कार, मैं संदीप से बोल रहा हूँ।
हाँ जी संदीप जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में।
मैम जैसे त्वचा का कैंसर होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं,
इसका
डिटेल में बताए।
त्वचा का कैंसर, त्वचा का कैंसर, देखिए त्वचा के कैंसर दो प्रकार के होते हैं, एक तो एक तरह का ऊतक होता है टिश्यू जो कि आपके त्वचा को रंग देता है, काला सफेद, वो तो उसको मेलानोमा कहते हैं, वो मसे में हो सकता है या जहां त्वचा एकदम काली पड़ने लगे या मसे में से बाल गिरने शुरू हो जाए तो ये थोड़ी चिंता की बात है। दूसरा त्वचा का कैंसर बहुत ही गोरे लोगों में होता है जिनके ऊपर या जो जिन लोगों को सफेद दाग होते हैं, जो जिनका शरीर पूरा सफेद दाग से ढक जाता है, तो वो सूर्य की किरणें नहीं सहन कर पाते हैं, जैसे विदेशों में गोरे लोग होते हैं उनमें सूर्य की किरणों के कारण ये त्वचा का कैंसर होता है, जो कि बड़ी जल्दी पहचान में आके इसका इलाज हो जाता है। तीसरा त्वचा का कैंसर जो चिंताजनक विषय है वो उन लोगों में होता है जिन, जैसे कोलतार में काम करने वाले उनके पैर जल गए, कहीं जल जाते हैं आदमी तो वहां का जो घाव बनता है जिसको हम स्कार कहते हैं, उस स्कार में भी कैंसर होता है, उसका उपचार कठिन होता है, परंतु घाव का यदि, मतलब अच्छे से घाव भर जाए तो फिर चिंता की बात नहीं है। वैसे त्वचा का कैंसर हमारे देश में बहुत प्रमुख रूप से नहीं पाया जाता है।
बिल्कुल, तो इनके साथ ही अगले श्रोता का प्रश्न भी ले। हेलो
नमस्कार, देवकी नंदन।
हाँ जी देवकी नंदन जी, आपका स्वागत है, क्या जानना चाहते हैं आप?
मैं कैंसर से ही पीड़ित हूँ। मेरी 35 को रेडिएशन और 13 कीमोथेरेपी हो चुकी है। होने के बाद मैंने 24 दिसंबर को डॉक्टर से चेकअप करवाया था। उन्होंने कहा कुछ अंश आपका बाकी है, एक महीने का ट्रीटमेंट ले, उसके बाद बताएंगे कि आपको है या कैसे है या उसके लिए टेस्ट करवाया जाएगा। मेरा मेन प्रश्न ये है कि मेरे कंठ बहुत ज्यादा सूखता है, रोटी वगैरह खाता हूँ मामूली नमक होता है, उसके आंखों से पानी और नाक से पानी बहना शुरू रहता है, खाना दुर्बल रहता है, जैसे कि बहुत ज्यादा दिक्कत खा रखती है। और तीसरा प्रश्न है कि शरीर का रंग वापस कैसे आएगा, जो हमारा जैसे पहले नॉर्मल था वैसा कब तक ठीक जा रही है।
देखिए ऐसा है देवकी नंदन जी, कैंसर का जब हम इलाज करते हैं बहुत कठिन सफर तो होता है, और इस सफर में दवाइयों की जो भी टॉक्सिसिटी होती है, साइड इफेक्ट होते हैं, अनफॉर्चुनेटली पेशेंट को बियर करना पड़ता है, यानी कि किस कोई चीज को क्योर करने के लिए हमें कुछ खोना भी पड़ता है। दवाइयां बहुत स्ट्रांग होती हैं और उनके साइड इफेक्ट्स में मुंह में कई छाले भी पड़ते हैं, स्वाद में बदलाव भी आ सकता है, बहुत तरह तरह के अन्य दिक्कतें आपको जो परेशानियां दिख रही हैं, कुछ इस तरह की हम चीज करें कि हम उसको कम कर सकते हैं, जैसे कि अपना खुराक जो है उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। मैं समझती हूँ कि मुंह में जब बहुत छाले हो जाते हैं दिक्कतें होती हैं, बट अगर आप अपने मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जिससे भी आप इलाज करा रहे हैं डॉक्टर साहब से मिले, तो एक बार वो अंदर की स्थिति देख के आपको बता पाएंगे सही रूप से कि क्या सेवन करने से या किन दवाइयों को खाने पीने से आपका खाना पीना और थोड़ा आसान हो सकता है। फल और वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियों का और फलों का सेवन करना बहुत जरूरी हो जाता है। हमें इस स्थिति में अपना इम्यून सिस्टम को बूस्ट करके रखना बहुत जरूरी है। अगर शरीर में अपने आप एक क्षमता होती है कि वो कई चीजों को अपने आप उसको दूर कर सकता है, और जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, तो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको भी बहुत पॉजिटिव रहना पड़ेगा, यानी कि आपके अंदर एक खुशी भी होनी चाहिए कि जिस बीमारी को हम लड़ रहे हैं उस पर हम जीत भी पा सकते हैं। अगर आप में ये पॉजिटिविटी आएगी तो आपको खुद महसूस होगा कि जो दवाइयों के जो साइड इफेक्ट्स भी जो होती हैं, आप धीरे धीरे आप उस पर भी जीत पा सकते हैं।
बिल्कुल डॉक्टर, और कई ऐसे प्रतिभाशाली लोग हैं, स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, एक्टर्स हैं, जो कैंसर की वजह से बहुत छोटी उम्र में चले गए, और कल जैसा कि डॉक्टर मनोज जी ने भी बताया, कैंसर दिवस पे पूरा दिन हमने अखबारों में देखा, टीवी पे देखा कि अखबारों में पढ़ा कि कितने ही लोगों ने इस पे जंग जीती है, और आपका कहना बिल्कुल सही है, पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर मनोज आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि आपने कारण तो बता दिए, लेकिन जांच कैसे होगी कैंसर की? कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो रूटीन टेस्ट हैं या सस्ते टेस्ट हैं, उनसे भी हम कैंसर मार्कर्स की तरह कैंसर को जल्दी पकड़ा जिसे जा सके, या कोई महंगे टेस्ट ही ऐसे हैं जिनसे हम कैंसर का पता लगा सकते हैं, जो हर आम इंसान हर आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, बड़े बड़े स्कैन?
देखिए आपका प्रश्न, मैं इसके प्रतीक्षा कर रहा था कि लोग ये सोचते हैं कि अस्पताल में टेस्ट कराने जाएंगे सरकारी अस्पताल तो नहीं धक्के खाने पड़ेंगे, और प्राइवेट में जाएंगे तो लूट लिए जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सरल परीक्षण है, और मैं हम बार बार कह रहे हैं ये हमारे भारत देश की एक बहुत बड़ी शोध है, रिसर्च है, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रचार कर रहा है डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए, कि एक महिला यदि साल में अपना एक पूरा चेकअप करा ले, उस चेकअप में क्या होता है, डॉक्टरी परीक्षण होता है, उसका क्या कहते हैं योनि का परीक्षण होता है, गर्भाशय मुख की दूरबीनी जांच होती है, योनि के जल का परीक्षण होता है, पेट का अल्ट्रासाउंड होता है, स्तन का परीक्षण होता है, 35 साल से कम उम्र है तो अल्ट्रासाउंड है, 35 साल से ज्यादा है तो मेमोग्राम है। पेट का अल्ट्रासाउंड इसलिए आवश्यक है कि वहां पे जो है पित्त की थैली के कैंसर महिलाओं में बहुत होते हैं, हमारे टाइम में सिखाया जाता है फैट फर्टाइल फीमेल ऑफ 40, जिसके बच्चे ज्यादा मोटे उनको क्या कहते हैं पित्त की थैली की प्रॉब्लम होती है, और इसके अलावा खून का परीक्षण, क्योंकि खून की कमी जो है वो महिलाओं में गले का कैंसर होता है, प्रोस्टेट या इसोफेजियल कैंसर कहते हैं, ये परीक्षण बड़े सिंपल सिंपल हैं, लगभग हर अस्पताल में इनकी ये उपलब्ध है, मेमोग्राफी नहीं है तो अल्ट्रासाउंड है। तो पहली चीज तो बंदा जाए तो परीक्षण कराने के लिए
एक बार,
हाँ,
अपने शरीर को,
हाँ,
अगर आप प्यार करते हैं,
हाँ,
और बचाना चाहते हैं,
हाँ,
तो एक दिन निकालना कोई बड़ी बात
अच्छा
नहीं।
और गायनेकोलॉजिकल और ये योनि परीक्षण यदि दो बार हो जाए तो उन महिला में कम से कम जो बच्चेदानी का कैंसर है उसके होने की संभावना सिर्फ 2% रह जाती है, ये अध्ययन कर लिया गया है पर लोग जाते नहीं है। इसीलिए कुछ मेडिकल कॉलेजेस में, जैसे हमारे देश में जनसंख्या का विस्फोट होता है, बच्चे पैदा होते रहते हैं, तो कुछ मेडिकल कॉलेजेस ने ये किया है कि वो महिलाएं जब बच्चे डिलीवर करने आती हैं तो उसी समय उनके योनि का परीक्षण और ये जो एचपीवी वायरस है उसके टेस्ट और वो सब उनका परीक्षण कर लेते हैं। अब पुरुषों के लिए, पुरुषों में जो पहले भाई जो सबसे पहले जो लोग शराब गुटखा तंबाकू बीड़ी पीते हैं तो वो समझ लें कि वो खतरे में है, तो कम से कम वो अपना मुख का परीक्षण और फेफड़ों का परीक्षण करा लें। जो लोग बहुत मोटे हैं उनमें आजकल गुदूद यानी प्रोस्टेट के कैंसर की संभावना बहुत बढ़ गई है तो वो कम से कम अपना पीएसए करा लें। 40-45 साल के बाद पीएसए बढ़े हुए आ रहे हैं मरीजों में, लड़कों में आजकल, तो वो जीवन शैली को सुधारें, वजन कम करें, 2 रोटियां किसी गरीब को दे दें खाने के बजाय, तो इस तरह से मतलब बहुत ही साधारण परीक्षण है, हमें कोई बड़े भारी ट्यूमर मार्कर तो उनके लिए जाने की जरूरत नहीं है। जैसे महिलाओं में, हाँ, क्योंकि अंडेदानी का कैंसर बहुत ज्यादा हो रहा है तो पहले तो अल्ट्रासाउंड से पता लग जाता है, फिर वो CA125 है, SE4, इस तरह के 2-3 जांचें निकल आई।
तो आपके कहने का मतलब है महंगे टेस्ट के अलावा केवल डॉक्टर का जो परीक्षण ही है उससे भी कई कैंसर,
मुआयना डॉक्टर के पास जाना ही सबसे पहली चीज, यहाँ तो परेशानी है ना, वो कैंसर के कैंप लगाए जाते हैं वो बहुत सफल नहीं होते हैं क्योंकि बोर्ड देखा तो लोग वहाँ से ही भाग जाते हैं, अरे यार जांच करेंगे कहीं कैंसर निकल आया तो क्या होगा।
बिल्कुल बिल्कुल,
वो सफल नहीं हो रहे हैं
डॉक्टर। तो जागरूकता बहुत जरूरी है। आइए कार्यक्रम का अगला प्रश्न। हेलो,
नमस्कार जी।
नमस्कार,
मैं यामीन भाई रेडियो वाला सिरोड़ी से बोल रहा हूँ के पास से।
हाँ जी, अपना सवाल पूछिए।
मैम मेरे 3 सवाल है।
हाँ जी,
एक तो ये है जी, जैसे कि गए वंशानुगत भी रहता है क्या? वंशानुगत भी रहता है जैसे?
हाँ जी,
वंशानुगत बताया तो अभी मैडम ने बताया तो।
1 मिनट, 3 सवाल है। जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि 20 साल की लड़कियों में भी यूटर्स में कैंसर का वो आ रहा है, अनमेरिड में भी। ये है जी, ये गले का कैंसर जो सिगरेट वगैरह कुछ नहीं पीते हैं, कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते, उनको भी हो रहा है, ये पूछना।
देखिए बात ऐसी है कि जो 20 साल की लड़कियों में कैंसर आ रहा है यूट्रस का, वो पेपिलोमा वायरस से संबंधित न होकर वो एक दूसरी ही किस्म है जो कि गर्भाशय की जो मांसपेशियां हैं उनमें हो रहा है, या वहाँ कई तरह के ऐसे ऊतक हैं, टिश्यूज हैं जिनमें वो कैंसर आ रहा है, तो वो बिल्कुल उसकी तरफ हम ना ध्यान देके जो कॉमन कैंसर हैं जिनका कॉमन जो प्रमुख कारण है उनके ऊपर ध्यान दें। दूसरी चीज, अभी तंबाकू से खतरा की बात खत्म ही नहीं हुई थी कि पता चला कि यही ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है वो मुख और गले के कैंसर का भी कारण देखा गया है। विदेशों में जहां तंबाकू को लेके अच्छा प्रचार है, लोगों ने तंबाकू छोड़ दी है, मैं अमेरिका के एमडी एंडरसन में था और वहाँ पे ये मरीज आते थे तो वो कहते थे हम लोग तो सिगरेट स्मोकिंग नहीं करते हैं, पर फिर भी उनको गले का कैंसर होता था, तो वो भी एक कारण है। पर इस तरह के मरीज बहुत कम हैं, ये इस चीज को बाधा ज्यादा जोर दे के कहने से कोई फायदा इसलिए नहीं, क्योंकि जो प्रमुख कारण है तंबाकू है या क्या कहते हैं, हाँ, जीवन यापन पद्धति की जो त्रुटियां हैं उनकी तरफ ज्यादा ध्यान देना है।
गले के कैंसर जैसे जो आप पूछ रहे हैं, तंबाकू तो डॉक्टर साहब ने बता ही दिया, और अन्य जो कारण है जिन्हें हम श्रोताओं को बता दें, दूसरा है शराब का पीना, सेवन करना, तीसरी बात है, अगर पेट में बहुत एसिड बनता है, जो एसिड है जब वो गले में भी उछलता है, ये भी एक कारण बन जाता है, क्रॉनिक एसिडिटी जब हम बोलते हैं इसको। चौथा कारण है, हमारे खुराक में बहुत कमियां हैं। हम लोग आजकल पाश्चात्य वेस्टर्नाइज इतना हो गए हैं, जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, देखिए हमारा जो फूड हैबिट है कितना बदल चुका है। जहाँ हम लोग फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाते थे, घर में खाना बनता था, आजकल जो यंग जनरेशन है देखिए फास्ट फूड की ओर कितना मूव कर गया है, फास्ट फूड, प्रोसेस फूड, ग्रिल्ड फूड, बारबेक्यू फूड, तो ये सब चीजें जो है हमारे शरीर में जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें बहुत कमियां आ रही हैं। और ये जो विटामिन्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें बहुत कम मात्रा में चाहिए शरीर को, जब वो नहीं मिलता है तो सेल्स में बहुत तरह तरह के चेंजेस आते हैं जो इस तरह के कैंसर भी कराते हैं। बाकी वायरसेस का रोल तो सर ने बता ही दिया है।
मैं एक रोल और ऐड करना चाहता हूँ, डॉक्टर ने बड़ी पर्टिकुलर बात की डाइट के बारे में। जागरूक हो जाइए, क्योंकि हमारी जो कृषि है, वानिकी है, उसको सुरक्षित करने के लिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा कृषि प्रोडक्शन हो, कई प्रकार की दवाइयां छिड़की जा रही हैं, चाहे वो मिट्टी में हो, चाहे वो ऊपर से हवा में छिड़की जा रही हो, चाहे वो गंदे पानी से उनकी सिंचाई की जा रही हो। और होता यूं है कि जैसे जैसे पौधा बढ़ता है उसमें ये सारे के सारे तत्व जहर सोख लिए जाते हैं, कीटनाशक दवाइयां, इन्फेक्टेड पानी जो गंदा पानी है उससे सिंचाई हो रही है, और ये सारे के सारे उसमें प्रवेश कर जाते हैं। फूलों और फलों को और सब्जियों को बचाने के लिए उनके ऊपर एक विशेष प्रकार का मुलम्मा चढ़ा देते हैं जिससे वो सड़े नहीं, उसको कहते हैं पोस्ट हार्वेस्ट कंजर्वेशन। कि साहब 100 आम तोड़े हमने बगान में, और पहले जब वो मंडी में आते थे तो 50 सड़ जाते थे, अब 10 भी नहीं सड़ते हैं। तो इस तरफ भी हमें बहुत ध्यान देना है कि सब्जियों फलों की खरीद, उनकी उपज और क्या कहते हैं उनकी धुलाई करके खाना है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि केरल प्रदेश में एक आजकल बड़ा भारी मूवमेंट चला है, वहाँ पे महिलाएं घर घर जाके लोगों को सिखा रही हैं कि अपने घर की छत पे टेरेस गार्डन बना के किचन गार्डन बनाओ, जिससे कि जिसको हम लोग ऑर्गेनिक फूड कह रहे हैं, ऑर्गेनिक फूड का बड़ा प्रचलन है, फैशन बना हुआ है, इसका प्रचलन वहाँ शुरू हो गया है, क्योंकि वो जानते हैं कि दवाइयाँ किस तरह से छिड़की जा रही हैं। और ये दवाइयाँ हमारे डॉक्टर साहब ने इम्यून सिस्टम की जो बात की थी, इम्यून सिस्टम को और तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम को डैमेज कर रही है।
डॉक्टर तपस्वनी, जब खाने की बात चली रही है तो रसोई घर से और भी ऐसे कई कारण और भ्रांतियां हैं जो कैंसर की तरफ संकेत करती हैं, जैसे माइक्रोवेव में खाना नहीं बनाना या प्लास्टिक के बर्तन इस्तेमाल नहीं करने, तो ऐसी और कई बातें हैं या खान पान है जिसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे?
प्लास्टिक के बारे में आजकल तो बहुत बात होती है, अगर हम उसकी गहराई में जाएं तो प्लास्टिक में बॉटल्स में आप देखेंगे नंबर होता है
जी।
तो जितना 7 नंबर से कम जो है उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चीप प्लास्टिक जो है वो डैमेजिंग इफेक्ट करते हैं। प्लास्टिक का जो गढ़न और जो रूप दिया जाता है, कोई भी जो शेप दिया जाता है उस चीज को, उसको हम प्लास्टिसाइजर्स यूज करते हैं, और वो जो प्लास्टिसाइजर्स हैं वो शरीर को हार्म करते हैं। जब हम ये प्लास्टिक के बर्तन माइक्रोवेव में भी करते हैं या कोई चीज उसमें गर्म करते हैं, तो एक पदार्थ जो है इसको पीपीए कहते हैं, तो वो रिलीज हो जाता है, वो लीक कर जाता है फूड में, खुराक में, और वो चीज हम सेवन करते हैं, और ये हमारे हार्मोनल सिस्टम को बहुत इम्बैलेंस करता है। तीसरी बात, जब प्लास्टिक जलाते हैं तभी आप देखेंगे कितना सरकार की तरफ से भी बहुत जोर लगा था कि प्लास्टिक को बैन करें और हम पेपर की ओर जाए, पर प्लास्टिक को जब जलाते हैं तो एक डाइऑक्सिन करके एक पदार्थ निकलता है जो उसका रोल है ये कैंसर कराता है। तो आज हम इस आज फोरम में ये कहना चाहेंगे कि प्लास्टिक जो सेफ भी प्लास्टिक हैं उनका इस्तेमाल जो 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
आधुनिकीकरण के नाम पे हमें सुविधाएं भी बहुत मिली है, लेकिन साथ ही साथ हमें उनका श्राप भी भुगतना।
बिल्कुल बिल्कुल।
तो आइए, एक श्रोता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो।
हेलो, नमस्कार जी।
नमस्कार,
राजेंद्र बोल रहा हूँ, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी।
नमस्कार।
हाँ जी राजेंद्र जी, पूछिए।
बीमारियाँ तो पहले थी, क्या इंसान की जीवन शैली भी इन बीमारियों को बढ़ा दी? और दूसरा ये प्राइवेट जो मतलब अपना कौन सा ऐसी चीज जो खाते पीते 5 रुपए 10 रुपए का बंदा लाता सस्ती लेके सबसे बड़ी बीमारी हम पाल लेते हैं, तो इसके बारे में। और ये अभी जो नेता लोग भी कहते हैं वो भी ना इसके लिए 7% आते नहीं, ये भी क्या
नेता लोग क्या कहते हैं? आप थोड़ा सा रेडियो सेट से हटकर बताएं, नेता लोग क्या कहते हैं? क्या सवाल क्या आपका?
उसके भी 7% खिंचवाते हैं, ये भी एक समाज में गलत मतलब संदेश जाता है, ऐसा भी कुछ डॉक्टर साहब आदेश करे तो अच्छा है।
डॉक्टर मनोज, ऐसा लग रहा है मुझे कि ये प्रचार गलत चीजों के प्रचार के साथ जो सेलिब्रिटीज भी फोटो खिंचवाते हैं और प्रचार गलत चीजों का कर रहे हैं, व्यसन है या जैसे इन्होंने बताया पैकेट में।
देखिए मैं पिछली बार शब्द भूल गया था, शायद उम्र का तकाजा है मेरे साथ। ये ब्रह्मचर्य की बात नहीं की जा रही है, लोग मजाक करते हैं कि ब्रह्मचर्य क्या है, तो ये एक यौन संबंध की सुरक्षित यौन संबंध या यौन संबंध से बचने का एक बहुत ही हमारे धर्मों में हमारे देश में हर धर्म में इसका प्रचलन किया गया था। दूसरी चीज आपको पता नहीं है पहले सिगरेट को लेकर कितना प्रचार, उसके ऊपर कम से कम रोक लगाई गई है, पर आज क्या हो रहा है कि शराब का जो प्रचार है वो बड़े छद्म रूप से लुके छुपे तरीके से किया जाता है। आप एक देखते होंगे कि बाबा सब कुछ पता नहीं क्या करके आता है टीवी पे, इससे जो जवान लड़के हैं लड़कियां हैं इनके ऊपर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। तीसरी चीज जो हम कहना चाहते थे और डॉक्टर साहब ने अभी बड़ी विस्तृत रूप से बताई है और हमारी मैडम भी कह रही थी, देखिए जो मोबाइल फोन है, मैडम ने प्लास्टिक की बात की, जब हम प्लास्टिक का उपयोग कर रहे थे शुरुआत में तो हमें पता नहीं था कि आज हमें उसके बारे में, आज प्लास्टिक उपयोग में पता नहीं 20-30-40 साल से, उस समय हमें नहीं पता था, आज हमें पता लग रहा है कि वो कितना खतरनाक हो सकता है। बच्चों की प्लास्टिक की फीडिंग बॉटल्स हटा के शीशे की बॉटल्स को रिकमेंड किया जा रहा है, यही हाल मोबाइल फोन के बारे में। मोबाइल फोन कितना खतरनाक हो सकता है इसके बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब में आ गए हैं। बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन दिया जाता है, क्या हम 20 साल बाद ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के जो दुष्प्रभाव हैं उनके लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं? तो मोबाइल फोन एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हमें बहुत गंभीरता से विचार करना है। विदेशों में मोबाइल फोन के बिक्री के जो पैकेट्स होते हैं, डिब्बे होते हैं, उनके ऊपर बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं कि जो है उसको कान के पास ना ले जाएं, बच्चों को ना दें, वो रिमोट यूज करें और क्या कहते हैं ज्यादा देर बात ना करें। हमारे देश में तो फैशन सा हो गया है, लोग दो दो मोबाइल फोन लेके घूमते रहते हैं, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? और खासकर से जवान, उन्हें कैंसर से संबंधित तो मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी उसके ऊपर रिसर्च चल रही है, पर मोबाइल फोन ने तंत्रिका तंत्र, आपका दिमाग, आपका नर्वस सिस्टम, आपकी मनोवृत्ति, आपकी साइकोलॉजी के ऊपर कितना बुरा प्रभाव डाला है इसके बारे में तो बहुत बात हो रही है, पर कोई सुनने कोई तैयार नहीं।
बिल्कुल डॉक्टर, चाहे आग और पानी भी हैं डॉक्टर साहब, दो पहलू हैं, आपको अपनी सोच समझ से इस्तेमाल करना है और उसके लॉन्ग टर्म में आपने जैसे बताया बाद में भी पता चलेगा और अभी तो नुकसान हो ही रहे हैं, समय भी बर्बाद होता है।
नुकसान तो पता ही लग रहा है, आप दूसरे तरह के नुकसान देखिए ना, एक्सीडेंट कितने बढ़ गए हैं, लोग बीच सड़क में मोबाइल पर बात करते हैं, वो कैंसर से संबंधित नहीं है पर हमारे साथ ये जीवन यापन से संबंधित है जो कहीं न कहीं हमें कैंसर से जोड़ रहा है मोबाइल फोन के बारे में। और लोग इसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहते हैं, इसकी अच्छाइयां देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, उससे कहते हैं हमारा जीवन कितना हो गया,
लेकिन ये कैंसर का कारक
बन सकता है।
बिल्कुल, देखते हैं अगले श्रोता क्या जानना चाहते हैं। हेलो, हाँ जी नमस्ते। नमस्ते, हेलो,
नमस्कार जी।
नमस्कार
मैडम, मैं झार से बोल रहा हूँ जी, हरबंश गिरिधर।
हाँ जी गिरिधर जी, क्या जानना चाहेंगे?
अच्छा जी, मेरा ना नेजल पोलिप की सर्जरी हुई हुई है।
हाँ जी,
और भी दूसरी कई सर्जरी हुई हुई है, मल्टीपल सर्जरी करवा रखी है, तो मेरे को ना इनहेलर भी यूज करने पड़ते हैं और नेजल स्प्रे भी यूज करने पड़ते हैं, जिसके कारण जो मुंह का टेस्ट जो बिगड़ा बिगड़ा सा रहता है काफी कसा, और कई बार छाले भी हो जाते हैं, और तो लगातार ऐसा बना रहता है। तो कई बार टेस्ट करवाता हूँ, मैं डॉक्टर के टच में रहता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों है, क्या इसका इन द लॉन्ग रन नुकसान तो नहीं होगा, कई मल्टीपल मेरे को मेडिसिन भी लेनी पड़ती है, तो उनका कोई साइड इफेक्ट से कोई ऐसी दिक्कत आए, पहली बात। और दूसरा ये है कि ना हमारे रिलेटिव उनके अचानक ही एक दिन उनके सिर में ना ब्रेन में वो ट्यूमर डिटेक्ट हुआ, और उनको 10-12 दिन में ही उनकी डेथ भी होगी एकदम इमीडिएट, ऐसा उनको कोई पहले लक्षण नहीं था, किसी तरह की उनको एडिक्शन नहीं थी, ऐसा क्यों हुआ?
नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका जो पहला सवाल है कि नाक में पॉलिप्स हैं, दोनों साइड पे हैं, तो जनरली ये कंडीशन हम जो कहते हैं ना एलर्जी, तो आपको एक चीज पे ध्यान देना पड़ेगा कि क्या आप किसी चीज से एलर्जिक हैं। अक्सर देखते हैं कि पेशेंट्स को या तो खुराक कोई खाने की चीज से होता है, या वातावरण में कुछ ऐसी चीज होती है जिससे उनको एलर्जी होता है, छींके वगैरह उनको बराबर बनाए रहता है, या सीजन चेंज होता है, या टेम्परेचर चेंज होता है, आप एसी में बैठे हैं सडनली आप बाहर जाते हैं तो छींके शुरू हो जाती हैं, तो ये जो लक्षण है ये संकेत करते हैं कि आपको किसी चीज से एलर्जी है। पहली चीज तो आप मैं सोचती हूँ कि आप जरूर किसी ENT सर्जन के साथ संपर्क में होंगे, तो अगर ये एलर्जिक है तो ये चीज एलर्जी जो चीज है वो कभी भी 100% ट्रीट नहीं हो पाता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर आप जान पाए कि किस चीज से आपको ये दिक्कतें होती हैं, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। दूसरी चीज, अगर नाक में कुछ गर्दन में कुछ कमियां हैं, कभी नाक की हड्डी टेढ़ी होती है या नाक की दीवारों में कुछ एक्स्ट्रा हड्डियां होती हैं, तो एलर्जी के साथ साथ वो नजला जुकाम अक्सर कर देते हैं, तो एलर्जी का तो इलाज चले आप कर ही रहे हैं, पर ये जो कमियां हैं नाक के स्ट्रक्चर में वो सर्जिकली करेक्ट होता है, जो आपके सर्जन देखने पे बता पाएंगे। जहां तक सवाल है दवाइयों का, जैसे मैंने कहा ये स्टेरॉइड्स आपको मिल रहे होंगे, लंबे समय तक स्टेरॉइड्स देने पड़ते हैं इस कंडीशन में, क्योंकि एलर्जी जैसे मैंने आपको बताया कि ये 100% जाती नहीं है अनलेस आप उस चीज को अवॉइड करें। तो साइड इफेक्ट स्टेरॉइड्स के होते हैं, और मुंह में जो स्वाद बदलता है ये चीज मैं समझ पाती हूँ, और बहुत लंबे समय से करने से भी मुंह में फंगस और फंगल इन्फेक्शन का डर रहता है।
बिल्कुल, तो दवाइयों के साथ साथ पूरी नींद, खान पान, ये सब आपने बताया। श्रोताओं, कैंसर का इलाज पूरा मुमकिन हो या ना हो, पर इसे काबू करना और इससे बचाव बहुत संभव है। कैंसर हो जाने पर इनसे छुटकारा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं, और अगर मरीज चाहे तो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से इस बीमारी का सामना कर सकता है, सही समय पे इलाज मुहैया हो तो पूरी तरह से ठीक हो सकता है। विश्व को कैंसर मुक्त करने के लिए हम सबको कदम बढ़ाना है, जागरूक रहना है, स्वयं अपने आप को, अपने सगे संबंधियों को व्यसनों से दूर रखना है, और यही हम कामना करते हैं हर दिन, हर विश्व कैंसर दिवस पे, कि कभी किसी को कैंसर ना हो। डॉक्टर मनोज, आप कोई संदेश देना चाहेंगे?
देखिए, मैं एक बहुत गंभीर संदेश देना चाहता हूँ कि जिस तरह से कैंसर के मरीजों का विस्फोट हुआ है जनसंख्या विस्फोट के साथ, उस तरह से कैंसर के चिकित्सा केंद्रों की अघोर कमी हो गई है। आप किसी भी कैंसर चिकित्सा केंद्र में जाएं, वहाँ वेटिंग लिस्ट है 6-6, 8-8 महीने की, वहाँ मशीनें नहीं है मरीजों का इलाज करने की। तो इससे अच्छा यही होगा कि पहले कैंसर का डिक्लेरेशन हो, उसके बाद आप मानसिक संताप में को भुगते हैं कि साहब मेरा इलाज 8 महीने बाद हो जाएगा, मेरा कैंसर बढ़ जाएगा, इसलिए इन सब चीजों से बचें और अपने को बचाएं।
और हर साल निरीक्षण करें, दोनों ही विशेषज्ञों का मैं धन्यवाद करता।
अभी आप कैंसर रोग जागरूकता और उपचार विषय पर फोन इन कार्यक्रम सुन रहे थे। आमंत्रित विशेषज्ञ थे मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व कैंसर रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर मनोज शर्मा और सुपर स्पेशलिटी फोर्टीज अस्पताल में कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तपस्विनी प्रधान शर्मा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी डॉक्टर सोनिया दत्ता। और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे एसपी सिंह।